At Southern Company, we know the right solutions start with the right questions. Like, how do we deliver clean, reliable, affordable energy for today and tomorrow? Southern Company, building the future of energy.
Hey there, you're listening to The Quint.
सत्रह दिसंबर से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने जा रही है। ये भले ही टेस्ट मैचों की सीरीज है, लेकिन इस सीरीज की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पिछली सीरीज में मिली जीत को वर्ल्ड कप की जीत से भी बड़ा माना था। जी हाँ, 2018 बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत काफी खास थी। अब फिर से वही मौका आया है और टीम इंडिया इस सीरीज को खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर है। टेस्ट सीरीज से पहले भी भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे और T20 सीरीज खेल चुका है, जहां वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पड़ाव भारी दिखा तो वहीं T20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जमकर आड़े हाथों लिया। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी, मैं हूं आपका होस्ट वैभव पलनीटकर। तो आपको अब इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये सीरीज इतनी अहम क्यों है। इस पॉडकास्ट में हम आपको उन सारी बातों से रूबरू कराएंगे जो बतौर क्रिकेट फैन आपको जाननी चाहिए, ताकि आप जब गुरुवार को सुबह 9 बजे क्रिकेट देखने के लिए स्क्रीन के सामने बैठें तो आप सारे पास्ट रिकॉर्ड, टीम स्क्वाड और दोनों टीमों की कमजोरी और मजबूती से वाकिफ हों, तभी मैच देखने का ज्यादा मजा आएगा। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे क्रिकेट के दिग्गज जानकार चंद्रेश नारायणन से। तो चंद्रेश, सबसे पहले बताइए कि टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
आई थिंक पहले टेस्ट मैच के लिए जो टीम सेलेक्ट हुई है एकदम परफेक्ट है। मेरे हिसाब से जो 11 है, आई थिंक ये दर्शाती है कि जो भारत जो थिंक टैंक है उनको पता है कि उनका 11 क्या है। हम बाहर बैठे बैठे स्पेकुलेट कर रहे थे कि पृथ्वी शॉ की जगह पे शुभमन गिल को होना चाहिए, कुछ लोग लोकेश राहुल की भी बात कर रहे थे क्योंकि वो एक दिवसीय T20 टीम के वाइस कैप्टन थे इस टूर पे। बट मेरे हिसाब से ये 11 दर्शाता है कि भारत को पता है कि उनका बेस्ट 11 क्या है। उनको पता है कि इस वक्त साहा जो है 36 साल के हैं, पर फिर भी विकेट कीपिंग के हिसाब से वो पंत से एकदम बेहतर है और वो पंत से बहुत आगे है विकेट कीपिंग के हिसाब से, तो उनको सेलेक्ट किया गया है। और उन्होंने ये भी दर्शाया कि अश्विन और उमेश यादव को जब उन्होंने टीम में शामिल किया है, ये बताते हैं कि हम अपने जो रेगुलर टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको मौका देंगे, ना कि उन प्लेयर्स को मौका देंगे जो व्हाइट बॉल में जो IPL हो गया या तो वनडे और T20 सीरीज जो अभी खत्म हुई है उसमें जिन्होंने परफॉर्म किया उनको मौका देंगे। तो उनके जहन में मुझे लगता है कि टेस्ट 11 और जो वनडे T20 11 एकदम साफ साफ है और आई थिंक इट इज अ वेरी गुड साइन। और दूसरी बात यह है, मुझे बहुत अच्छा लगा यह देख के कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पहले ही अपना 11 अनाउंस कर दिया, क्योंकि अगर आपको पता है आपका बेस्ट 11 क्या है उसको टॉस तक छुपा के रखने में कोई मतलब नहीं है।
टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ खिलाड़ी स्टीव स्मिथ की वापसी हो चुकी है, डेविड वार्नर भी टीम में शामिल होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान भी टिम पेन हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि टेस्ट मैच के एक दिन पहले ही भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि पृथ्वी शॉ टीम में दूसरे नंबर पर बतौर ओपनर रहेंगे, बाकी भारत की तरफ से पहले ओपनर तो मयंक अग्रवाल ही हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि पृथ्वी शॉ को KL राहुल और शुभमन गिल के ऊपर तरजीह दी गई है, वहीं विकेट कीपर के लिए भी ऋषभ पंत की जगह रिद्धिमान साहा को चुना गया है। वैसे पहले माना जा रहा था कि टेस्ट में पृथ्वी शॉ को खिलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी शॉ को खिलाए जाने को लेकर काफी मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं। बता दें कि प्रैक्टिस मैच में पृथ्वी शॉ का सर्वाधिक स्कोर 29 गेंदों में 40 रन का था, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच में जब रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे तो पृथ्वी शॉ ने ही ओपन किया था, तब 2 मैचों में उन्होंने एक अर्धशतक बनाया था। पृथ्वी शॉ को टीम में खिलाने के पीछे सिलेक्टर्स की क्या सोच हो सकती है और वो उन्हें खिलाना क्यों अहम मानते हैं, इस पर जानते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट चंद्रेश की राय।
मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं हूँ कि उनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उनका टेस्ट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। आखिरी जो टेस्ट मैच इंडिया ने खेला था न्यूजीलैंड में, उन्होंने 50 मारा था उसमें, और इंडिया के एक या दो खिलाड़ी थे जिन्होंने 50 मारा था, उसमें से एक पृथ्वी शॉ थे। विराट कोहली ने भी नहीं मारा था, पुजारा ने भी नहीं मारा था, रहाणे ने भी नहीं मारा था। तो पृथ्वी शॉ का जो हम जो अपनी मत बना रहे हैं पृथ्वी शॉ को लेकर, वो बना रहे हैं उनके हाल ही के आईपीएल के फॉर्म को लेकर। और फर्स्ट क्लास मैच जो हुआ था इस टेस्ट मैच के पहले, उसने भी जो दूसरे इनिंग्स में उन्होंने और गिल ने दोनों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। मेरे हिसाब से हमें थोड़ा पृथ्वी शॉ के साथ थोड़ा पेशेंट होना जरूरी है, बिकॉज आई थिंक दैट उनमें बहुत प्रतिभा है, और आई थिंक उनका जो फॉर्म है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, बट आई थिंक वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है, जिस तरह से एक जमाने में वीरेंद्र सहवाग थे या ऑस्ट्रेलिया का माइकल स्मिथर थे। और आई थिंक पृथ्वी शॉ का टेस्ट टीम में चयन होना, 11 में चयन होना, आई थिंक बहुत बढ़िया डिसीजन है। जहां तक शुभमन गिल की बात है, मेरे हिसाब से वो दिन बहुत नजदीक है जब शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ एक साथ भारत के लिए टेस्ट मैच में ओपन करेंगे। शायद वो इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में होगा या अगले साल इंग्लैंड में होगा, बट वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल दोनों भारत के लिए टेस्ट मैच में ओपन करेंगे। और मैं ये एक दिन भी देखता हूँ कि आज से 2-3-4 साल बाद भी मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल भारत के कप्तान भी हो सकते हैं।
प्लेइंग 11 चुनते हुए सिलेक्टर्स के सामने एक और पशु पेश होगा कि बतौर विकेट कीपर किसे चुना जाए। वैसे तो सिलेक्टर्स के सामने तीन विकल्प थे, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत, लेकिन सिलेक्टर्स ने चुना रिद्धिमान साहा को। आपको याद दिलाते हैं, ठीक एक साल पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने साहा को दुनिया का सबसे बेहतरीन कीपर कहा था, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए पंत को चुना गया। अब चंद्रेश से समझते हैं कि साहा में ऐसा क्या खास है जिससे सिलेक्टर्स ने उन्हें चुना है।
मुझे लगता है कि आई थिंक इस सीरीज के पहले एक बहुत बड़ा हमें एक इंडिकेशन मिल गया था कि ऋषभ पंत जो है वो इस वक्त टीम थिंक टैंक के प्लानिंग में ही नहीं है। अगर वो होते हैं तो वो व्हाइट बॉल सीरीज में भी खेलते या वो उस टीम में भी होते। और इस सीरीज में भी आप देखें, सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस मैच के पहले फर्स्ट क्लास मैच में एक शतक मारा था, बट आपको उस मैच को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी थी वो ऐसी गेंदबाजी थी जिसमें उनके एक दो गेंदबाज चोटिल होकर बाहर चले गए थे और वो सेकंड स्ट्रिंग बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, और उस मैच में उस वक्त कुछ नहीं था। तो इसलिए उस सेंचुरी को थोड़ा हमें उस तरह से भी देखना चाहिए कि वो ऐसे सिचुएशन में आया जब स्टेक पे कुछ नहीं था। जहां तक साहा की बात है, मेरे ख्याल से साहा को इसीलिए चुना गया है बिकॉज इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में खासकर आप देखोगे कि बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होगा, और ऐसे में एक कैच भी अगर छूट जाए वो बहुत खतरनाक हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में हमने अक्सर देखा है कि जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाके खेलती है, अगर वो पहले दो सेशन में कैच ड्रॉप कर देती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम हावी हो जाती है, या वो इंडियन टीम हो, पाकिस्तानी टीम हो, इंग्लिश टीम हो, जब भी पास में ये लोग गए हैं खेलने के लिए, जब कैचेस ड्रॉप हुए तब वो ऑस्ट्रेलिया टीम हावी हुआ है टूरिंग टीम पे। तो इसलिए साहा का वहां पे होना बहुत जरूरी है। और अगर बल्लेबाजी एक मापदंड है तो पहला जो टूर मैच था उसमें साहा ने एक बढ़िया बल्लेबाजी की और भारत को हार से बचाया था। आई थिंक वो ज्यादा जरूरी है, ना कि ऐसे सिचुएशन में रन बनाए जब बॉलिंग भी कमजोर हो और मैच में भी कुछ ना हो।
सर, ये पहला मौका होगा जब पिंक बॉल, जब क्रिकेट ये खेलेगा कहीं दूसरे देश में, तो आपको क्या लगता है कि भारत क्या उन परिस्थितियों में अपने आप को टीम ढाल पाएगी?
बिल्कुल ढाल पाएगी, क्योंकि अगर आपको एक प्रैक्टिस मैच मिला है, आपने काफी मैच सेशन किया है, और आपने पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ भी डे नाइट टेस्ट मैच कोलकाता में खेला, टीम में काफी ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने ड्यूलिप ट्रॉफी में पिंक बॉल के साथ खेला है, तो इन्होंने काफी एक्सपीरियंस किया है पिछले 3-4 सालों में। और ये उसी तरह से होगा जिस तरह से 1980-81 में जब भारत की टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया गई थी और उनको दिन रात का मैच खेलना था पहली बार जिंदगी में, जिसके पहले उन्होंने हिंदुस्तान में भी कभी नहीं खेला था
जी।
उसके मुकाबले 40 साल बाद इन्होंने काफी एक्सपीरियंस किया भारत में और घरेलू क्रिकेट में, तो आई डोंट थिंक कोई तकलीफ होगा उनको।
सीरीज में भारत के सामने टीम ऑस्ट्रेलिया है, और ये जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 पिंक बॉल डिनाइड टेस्ट में अजेय रही है। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पन्ने पलट कर देखें तो ये रिकॉर्ड्स भारतीय टीम के पक्ष में जाते हैं। 2 साल पहले गई सीरीज का एडिलेड में खेला गया पहला मैच भारत ने 31 रनों से जीता था। वनडे गेम में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत की टीम पर हावी होती दिखाई दी थी, लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि डेविड वार्नर शुरुआती 1 या 2 मैच नहीं खेलने वाले हैं। अब फिर से बात करते हैं चंद्रेश से कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को लेकर उनका क्या विश्लेषण है।
आई थिंक ऑस्ट्रेलियाई टीम में जो सलामी बल्लेबाजी है उसमें एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है अभी भी। जो बर्न्स है, आई थिंक मार्कस हैरिस है, इन दोनों का ओपन करना तय है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहीं पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर वो ओपनर्स को जल्दी निकाल पाए फिर आप मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ पे बहुत ज्यादा दबाव बना सकते हैं। बिकॉज अब तक ऐसा होता आ रहा है कि मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ को एक प्लेटफॉर्म मिलता रहा है जहाँ पे वो आके एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। अगर आप उनको वो मौका ही ना दें तो फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बात ये भी है कि चूंकि डेविड वार्नर पहले टेस्ट मैच में नहीं है और विराट कोहली पहले टेस्ट मैच में, आई थिंक दूसरे टेस्ट मैच से भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए जरूरी है कि पहले ही टेस्ट मैच में भारत एक बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन छोड़े और इस मैच में एक ऐसा प्रदर्शन करे ताकि दूसरे टेस्ट मैच से ऑस्ट्रेलिया पे दबाव ना कि भारत पे।
अब चंद्रेश से आखिरी और दिलचस्प सवाल, सर आपके हिसाब से टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसा एक एक प्लेयर कौन है जो इस सीरीज में अपने प्रदर्शन से चौंका सकता है?
पिछले बार तो ऐसा लग रहा था वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं तो वापस ही नहीं आ रहा, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है वो अब भी वहीं पे बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से उन्होंने रन बनाया था पिछले बार। इस बार मेरे ख्याल से वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी उनका जो प्रदर्शन होगा वो बहुत क्रूशियल होगा भारत के लिए अगर उनको 2018-19 का परफॉर्मेंस रिपीट करना है तो। बिकॉज आई थिंक अगर वो 550 के जगह अगर वो 350-400 भी रन बना दे वो भी भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा, बिकॉज वो विराट के बाद भारत के सबसे सफलतम इस वक्त के सबसे सफलतम टेस्ट बल्लेबाज है। तो आई थिंक दैट उनका बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी होगा उनका फॉर्म में आना और लय पकड़ना।
ओके सर, आखिरी में एक लास्ट सवाल होगा कि एक टीम एक प्लेयर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से और एक प्लेयर इंडिया की टीम से बताएं जो चौंका सकते हैं।
चौंकाने में मुझे लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम से मुझे लग रहा है मैथ्यू वेड हो सकते हैं, बिकॉज दोनों ऐसे क्रम में आके बल्लेबाजी करते हैं जहां पे वो मैच का रुख बदल सकते हैं, और अगर ऊपर से जल्दी जल्दी विकेट चले गए तो फिर ये दोनों बल्लेबाज एक एक ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं जिससे मैच का रुख बदल सकता है। और ये सीरीज अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उनको सबको दिखाना है कि अब भी उनमें उतना ही दमखम है, और अगर वो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।
थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू।
तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये टेस्ट सीरीज धमाकेदार होगी। टेस्ट क्रिकेट स्लो जरूर होता है लेकिन असली क्रिकेट प्रेमी लोग जो होते हैं वो काफी जोरदार तरीके से टेस्ट क्रिकेट ही फॉलो करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़े बड़े अपडेट्स, आर्टिकल्स, वीडियोस आपको क्विंट की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, तो क्विंट को फॉलो करते रहिए। इस पॉडकास्ट के एडिटर हैं संतोष कुमार और इसे प्रोड्यूस किया है आपके होस्ट वैभव पलनीटकर और कनिष्क दांगी ने। अगर आपको द बिग स्टोरी सुनना पसंद है तो क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए और हमारे पॉडकास्ट सेक्शन का मजा लीजिए।